चलें जी, इंशाल्लाह ताला। अब आप लोगों के पास पारी हैं, अब खोल लें इनको। सूरतुल बकरा शुरू से निकालें, कुरान पाक बगैर तर्जुमे वाला। अच्छा, पहले देखें, मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग से पूछा जाए कि सूरतुल बकरा में आपने क्या पढ़ा है, आपको सब चीज़ें इस तरह से आपके माइंड में होनी चाहिए जैसे पूरा एक यानी पार्ट्स में कि क्या क्या, क्योंकि बहुत लंबी सूरत है ना, तो आप यानी एक ओवरव्यू आपके जहन में होना चाहिए। पहला रुकू क्या बताता है आपको, शुरू किया पहले दो रुकूआत आपको क्या बताते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्या है इसके अंदर, आप कहेंगे कि तीन किस्म के लोगों का जिक्र है, पहले मुत्तकीन का, फिर काफिरों का जिक्र। पहले रुकू में खत्म हो जाता है और उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र है, जो पूरा दूसरा रुकू जो है ना, वो मुनाफिकीन के जिक्र के ऊपर मबनी है। उसके बाद तीसरे रुकू में क्या है, यानी ये चार रुकू एक समझ ले तमहीद है, तमहीद समझते इंग्लिश में, पता नहीं तमहीद को क्या कहते हैं। तो एनी हाउ, जब किसी बात को स्टार्ट करने से पहले एक तमहीद बांधी जाती है ना, वो है। तो पहले जो दो रुकू है वो तीन किस्म की लोगों के बारे में ऊपर मबनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रुकू में क्या आता है, थर्ड रुकू में कुरान पाक की दावत का जिक्र है, इसकी हक्कानियत का जिक्र है। और चौथे रुकू में फिर आप देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और इबलीस के साथ उनका जो पूरा किस्सा है वो जिक्र किया जाता है। उसके बाद पांचवें रुकू से क्या स्टार्ट होता है, बनी इसराइल के साथ बात, जो रुकू हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यानी चार रुकू आपने पहले के अलग कर लिया, आपके जहन में होना चाहिए इन चारों रुकूआत में क्या है। अगर आपको मैं एक मिनट में पूछूं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा सूरह बकरा में, तो यू शुड नॉट बी लॉस्ट के वो पता नहीं है, वो आदम अलैहिस्सलाम का भी पढ़ा था, हाँ वो एक दफा ये भी पढ़ा था, वो नहीं पता होना चाहिए आपको पहले रुकूआत में क्या है, तीसरे रुकू में क्या है, चौथे रुकू में क्या है, पांचवें रुकू में क्या है, लाइक दिस। ऐसे आपके जहन के अंदर जैसे खाने होते हैं उनके अंदर रखें और इन चीजों को बाकायदा आपको पता होनी चाहिए, यहां से ये मैं ब्लॉक निकालूंगी इसमें क्या है, ठीक है, अदरवाइज आप पूरी सूरत में लॉस्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने पांचवा रुकू देखें, अब इसमें निकालिए अपना पांचवा रुकू, ये जो आपके पारे सादा कुरान के हैं, ओके, वो इन पारों में ना इतना लंबा चौड़ा तर्जुमे वाले पारों में आप बिल्कुल गुम हो जाएंगे। अच्छा जी, हमने पांचवा रुकू पढ़ा था लास्ट टाइम आयत नंबर 40 से 46 तक। ये रुकू बहुत अहम रुकू है इस लिहाज से 7 आयाज हैं इसके अंदर। इस रुकू में दावत दी गई है, मैंने आपको पहले बताया था कि बनी इसराइल को एक बहुत ही यानी जैसे शफकत से और मोहब्बत से और बहुत इनको यानी एक दावती अंदाज है जिसको कहेंगे, ये जब हमने भी दावत देनी हो किसी को तो हम किस तरह से दावत देंगे वो इस रुकू के अंदर आपको पता चलता है, ठीक है। और इस रुकू में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, डू दिस डोंट डू दिस, डू दिस डोंट डू दिस, तकरीबन आप इसको गिन लें तो मेरे ख्याल में तकरीबन 11 डूज है। डू इट, जैसे उद्कुरु, औफू, आमीनू, निकालिए ना आप ये सारा, देख रहे हैं ना। अच्छा, फिर अकीमू, आतु ज़कात, वरकाऊ, अच्छा फिर आगे देखें वस्ताइनू, सलात के साथ भी और सबर के साथ भी है, ये सारे हैं डू दिस डू दिस डू दिस। और डोंट डू दिस के लिए क्या है, ला तकूनू अव्वला काफिरीन, ला तश्तरू बिआयती, ला तलबिसुल हक्का, ला तक्तुमुल हक्का। अच्छा, इस तरह से ये सारे डोंट्स हैं, डोंट्स भी तीन चार डोंट्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ही एक दावती सा अंदाज है और बहुत ये वाली आयात बहुत अहम है क्योंकि आगे फिर उसके बाद टोन चेंज हो जाती है। अब आज जो हमने पढ़ना है ना, हालांकि खिताब वही है, बनी इसराइल को ही है। मैंने आपको क्या बताया था कि अभी ये सारा खिताब चलेगा, ये पूरी स्टोरी बनी इसराइल के साथ जो है ना वो चलेगी आगे भी, मगर यहां से जो आज हमने पढ़ना है आयत नंबर 47 से लेकर आप आगे देखिए 14th रुकू तक, आप देखें 14th रुकू निकालिए, आयत नंबर 121 पे 14th रुकू खत्म होता है, वो निकाले 121 आयत, यहां से लेकर 121 आयत तक पूरी इनके ऊपर बात हो रही है। और 122 और 123 आयत जो है ना, सेम टू सेम वही हैं जो 47 और 48 आयत है। देखें आप, 48 आयत और 123 आयत में बस थोड़ा सा फर्क है, जैसे यहां पे वत्तकु यौमन ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, वहां पे भी यही है, वला युक्बलु मिनहा वहां पे भी यही है, यहां पे भी यही है, मगर इधर 48 में है शफातुन, उधर क्या है अदलुन, ठीक है, यहां पे 48 में है वला युखदु मिनहा अदलुन और वहां पे है वला तनफाउ हा शफातुन, वहां पे शफात की बात बाद में, अदल की पहले आ गई, और एंड भी वही है वला हुम युनसरून, ठीक है। तो यहां पे जाके बात खत्म हुई, इसके बाद फिर बनी इसराइल की बात नहीं है, वो आगे क्या बात है वो मैं इंशाल्लाह आपको, ताकि अभी आपके लिए टू मच नहीं इन्फॉर्मेशन हो जाए, मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आप इस चीज को नोट कर लें कि आयत नंबर 47 एंड 48 और उधर आयत नंबर 122 और 123 पे जाके बात ये पूरी मुकम्मल हो गई, मगर इनके बीच में जितनी आयतें हैं वो सब बनी इसराइल से खिताब हो रहा है, उसमें बनी इसराइल के ऊपर। अब यहां से पहले तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो हमने पिछला रुकू बहुत उनको प्यार से दावत दी है, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये करो ये याद करो, अब क्या है यहां पे? आज जो हम पढ़ेंगे ये समझ लें, ये एक ब्रैकेट्स हैं, 47, 48 ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और 122 और 123 ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ब्रैकेट्स का पता होता है जो मैथमेटिक्स में कभी आपने अगर पढ़ा हो तो ब्रैकेट्स होती हैं, यानी इसके बीच में सारा जो भी मजमून है ना वो इसके बीच में है। बड़े खूबसूरती से ये सुभान अल्लाह जो यहाँ पे इसकी जिस तरह से रखी गई है आयात, कितनी खूबसूरती है ना इसके अंदर। तो ये इसके बीच में आप देखेंगे खास तौर पे जो आज रुकू हम पढ़ेंगे, यानी ये है सिक्स्थ रुकू और सेवंथ रुकू, इन दोनों रुकूआत के अंदर तो आप देखेंगे कि एलिगेशंस हैं जो इनके ऊपर लगाई गई हैं, तुमने ये किया, हमने तुम्हारे साथ ये किया और तुमने ये किया, हमने ये किया और तुमने ये किया, हमने ये किया और तुमने ये किया, ये यानी सिक्स और सेवंथ रुकू तकरीबन बहुत साथ साथ एक दूसरे के मतलब काफी मिलते जुलते कह सकते हैं, या एक ही मजमून कह सकते हैं कि पूरी एलिगेशंस है कि तुमने ये किया। अच्छा, हमें बताने की क्या जरूरत है इस चीज का कि तुमने ये किया, हम क्या करें इस चीज से? हमें इसलिए बताना जरूरी है कि तुमने ये नहीं करना, क्यों हमें क्यों बताना जरूरी है? मैंने आपको पिछली दफा बनी इसराइल की हिस्ट्री बताई थी, बहुत जरूरी है कि आप सबको वो बिल्कुल याद होनी चाहिए, किताबें नहीं खोलनी, नोट्स नहीं खोलने, उसके लिए आपको याद होनी चाहिए कब बनी इसराइल मिस्र में आए, क्या हुआ था फिर उनके साथ मिस्र में, क्यों आए थे वो मिस्र में, ये क्वेश्चन सबको आंसर आता है, क्यों आए थे मिस्र में, वो तो कनान में रहते थे, वहां से क्यों आए मिस्र में, क्या करने आए थे, वो गुलाम कैसे बन गए, उनको बनी इसराइल क्यों कहा गया, किसकी गुलामी में थे वो आ गए, और कैसे बने, क्या गुलामी करने आए थे यहां पे, या इनको पकड़ के लाया गया था यहां, कितने साल तक ये आजाद रहे थे, बड़े अच्छे यहां पे रहते रहे, और कितने साल तक फिर उसके बाद ये गुलाम बने रहे, जब तक मूसा अलैहिस्सलाम ने आके इनको निजात नहीं दिलाई। मैं सब बता चुकी हूं आपको, बिल्कुल आना चाहिए, ये नहीं आ रहा पिछला वाला लेक्चर दोबारा सुने, लिखें उसको बार बार पढ़ें, ओके, ये देखें अभी कितनी सारी आयतें हमने इनके बारे में पढ़नी है। अब आपको अजबर याद होना चाहिए कि जो हमने पांचवा रुकू पढ़ा है उसके अंदर अल्लाह ताला ने दावत का अंदाज इख्तियार फरमाया और इन लोगों को दावत दी है किस चीज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने की, ठीक है, और आगे भी सारा यही है, मगर अब इनके ऊपर एलिगेशंस है, अब सख्ती के साथ इनसे बात हो रही है, ठीक है। और फिर हम 14th रुकू तक ये सारी बातें पढ़ेंगे और आखिर की जो 15th रुकू के अंदर दो आयतें हैं ये 122 123 इनमें जाके फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और इसके बाद यहां तक इनका जिक्र फिर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मते मुस्लिमा की शाम आता है कि अब वो क्या करते हैं। अच्छा खैर, तो वो सब चीजें फिर इंशाल्लाह उसके बाद आएंगी, तो लेकिन अभी इनको बताया जा रहा है, इनको भी बताया जा रहा है कि क्यों तुम्हें हटाया जा रहा है इस मनसब से। मसलन एक बंदा एक जगह पे काम करता है, कोई सदर है किसी जगह का, प्रेसिडेंट है, अब उसको हटाया जा रहा है, ठीक है, जब उसको फायर किया जाता है तो बताया जाता है भाई तुमने ये करप्शन किए, तुमने ये गलत काम किए, तुमने ऐसे किया, ये किया, ये किया, इस वजह से तुम्हें अब निकाला जा रहा है। अब नया उसकी जगह प्रेसिडेंट आता है और उसको बताया जाता है कि देखो तुमने वो नहीं करना, जो इसने किया, उसके घपले ये थे, उसने ऐसे किया, उसने फलां बेईमानियां की, उसने फलां किया, तो क्यों उसको बताया जा रहा है? कहेगा मुझे इससे क्या, क्यों बताया जाता है? कि अब तुम ये ना हो कि तुम भी वही करने लगो, क्योंकि तुम्हें भी वही पोजीशन मिल गई। अब बिल्कुल यही स्टोरी यहां पे समझ लें कि जो पुराने इमाम थे वो ये थे बनी इसराइल, इन्होंने ये किया। जब इंसान एक मनसब पे होता है ना, किसी ऑनरेबल पोजीशन के ऊपर, किसी बड़ी पोजीशन पे, तो जो बहुत रिस्पेक्टेबल भी होती है, तो उसको जेब नहीं देता कि वो कुछ ऐसे ऐसे काम करे। अब उन्होंने तो किए, और जब जाहिर है एक जगह पे इंसान होता है और उसके पास कुछ इख्तियारात भी होते हैं और वो कोई बड़ी पोजीशन भी ले लेता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें उसके पढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब है, आप एक बंदा है वो पोजीशन ऑफ पावर में है, तो उसके करप्शन में पढ़ने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मौके आते हैं ऐसे, है ना। तो इसी तरह जो बनी इसराइल थे ना, वो पहले इमाम थे। इमाम कैसे थे, क्या होता है इमाम, ये हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको सारे ये एलिगेशन बताए कि देखो ऐसे ही नहीं तुम्हें हटाया जा रहा, तुमने ये किया ये किया ये किया, हमने तुम्हें कितने चांसेस दिए, कितने चांसेस दिए कि तुम अपने आप को सही कर लो, लेकिन तुम ऐसे ढीठ बने, तुमने फिर ये 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 ये, देखो ये तुम्हारे कारनामे, ये तुम्हारे कारनामे, ये सब बताए जा रहे हैं। अब ये कुरान कब उतर रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। इस वक्त ना आप सब के दिमाग ना बिल्कुल खुले होने चाहिए, कोई सो ना रहा हो, कोई सुस्त ना हो, क्योंकि ये बहुत अहम बातें, अगर आपको ये ना समझ आई, आगे हम चलते जाएंगे। आयतें बहुत आसान है, और हो सकता है कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ी हो, मगर आपको ये पता होना चाहिए क्यों ये आया यहाँ पे। बहुत दफा कुरान में तर्जुमे भी कई लोगों ने पढ़े हुए हैं, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, कई लोगों को वैसे ही पता ही है, ये स्टोरीज पता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, फिरौन ने किया, कि क्यों ये सब कुछ आया, क्या बताया जा रहा है हमें, ये नहीं पता होता। तो ये कुरान कब उतरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में। अब क्या है, हजारों साल गुजर चुके हैं जब फिरौन आया था, अब क्यों बताया जा रहा है? इसलिए कि अब जाके, उस वक्त थोड़ी, अब जाके, नाउ यू आर फायर्ड, अब ये उम्मत मुस्लिमा तुम्हारी जगह पोजीशन लेगी। समझ आई? एक सदर ने 10 साल पहले करप्शन की थी और वो 20 साल से 30 साल से वो समझें कि वो उस पोजीशन पे बैठा हुआ, तो अब जो नया आया उसको क्या बताएंगे कि उसने उस जमाने में ये किया, उसने 1940 में ये किया, 1980 में ये किया, फलाने वक्त में ये किया, वो सारी उसकी हिस्ट्री बताई जा रही है। समझ आई ना बात? तो वो फिरौन के वक्त से वो सब जो कब क्या क्या इनके साथ हुआ और इन्होंने क्या क्या किया, वो सब चीजें इनको बताई जा रही हैं, एक तरह से ये बताने के लिए कि देखो इस वजह से तुम्हें अब हटाया जा रहा है। और ये जो आप बड़े बच्चे को जब डांट रहे होते हैं और आप छोटे बच्चे को कह दिखा रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे बड़े भाई ने ऐसा ऐसा किया है ना, तुमने नहीं ये करना, यही समझने एक रिश्ता है इनमें। ये एक उम्मत थी जो पहले आई हमसे, इन्होंने जो कुछ हरकतें की, एक नबी की उम्मत थे, लेकिन इन्होंने जो हरकतें की तुमने नहीं करनी है, छोटे भाई को बताया जा रहा है तुमने नहीं करनी ये, लेकिन अब घर की जिम्मेदारी छोटे भाई तुम पे है, ठीक है। अब इसने बड़े ने जो इरिस्पॉन्सिबिलिटीज की हैं, इसलिए ये अब घर का सरबरा नहीं है, अब तुम हो। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये बात यहां तक समझ आई है तो हम आगे चल सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ आई तो फिर आगे आयतें उस तरह नहीं समझ आएंगी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि मैं क्यों ये सीखूं। समझ में आया ना बात? अच्छा, फिर ये बात है, हमें क्या जिम्मेदारी मिली? हमें तो आज तक यही नहीं पता, हम तो बस पैदा हुए हैं और जैसे दुनिया चल रही है इसी तरह हम भी एक भेड़ चाल है और चलते चले जा रहे हैं, हमें तो ये पता ही नहीं हमें हमारे पर भी कोई जिम्मेदारी है। ये जरूर पता है जो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ये जरूर पता है कि हमें फजीलत मिली है सब पे, ये बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कोई जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आई है। अब वो छोटा भाई कह रहा है कि मुझे बहुत खुश है, बहुत खुशियां मना रहा है, मुझे अब घर का सरबरा बना दिया गया। ओ घर का सरबराह तो तू बन गया, अब तेरे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी भी तो आएगी। ये थोड़ी है कि घर का सरबराह बनने का मतलब ये कि इंसान खुशियां मनाता जाए कि मैं सरबराह बन गया। जाहिर है सरबराह बने हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है। तुम बड़े बने हो घर के, तो अब तुम्हें बड़ा बन के भी दिखाना है। अब तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। और अगर वो सिर्फ खुशियां मनाता रहे, पार्टियां करता रहे कि अब से मैं हूं जिसके हाथ में चाबी आ गई सेफ की और घर का सब चीज अब मैं चलाऊंगा, इसी पे खुश होता रहे और कुछ भी ना करे, तो फिर तो काम नहीं बनेगा ना। ये तो वो बड़ा नहीं रहा। तो इस चीज को इस तरह से आपने समझना है, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो हम देखेंगे आज क्या क्या अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, क्या इन्होंने किया था ऐसा। और लास्ट टाइम मैं आपको यह हदीस बता चुकी हूं कि ये उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त यानी प्रिडिक्ट किया था, पेशीन गोई की थी, बता दिया था कि मेरी उम्मत भी हाथ बहाथ बालिश बालिश इनके पीछे जाएगी, इन्हीं के जैसे काम करेगी, हत्ता कि ये गो के बिल में भी जाएंगे तो मेरी उम्मत उसमें भी इनके पीछे चली जाएगी, हत्ता कि कोई इनमें से अपनी माँ से जिना करेगा तो मेरी उम्मत में से भी कोई एक खड़ा होगा बदबخت जो यही काम करेगा। इतना ज्यादा इनको फॉलो किया जाएगा, इतना ज्यादा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पता है कि हमारी भी हरकतें वही होने वाली हैं तो हम इबरत क्यों नहीं लेते इनके हालात से। इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद आया, और अल्लाह ताला की उनसे क्या एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی۔ کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کی تھی؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان میں رسول آئے، ان پہ کتابیں اتری۔ آپ نے اگر وہ فیملی ٹری ٹائپ ایک بنایا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام اوپر ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے نیچے نام کے نیچے آپ نے ایک لائن ڈرا کر کے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور اسحاق علیہ السلام کے نیچے باقی تمام جو پیغمبر آئے یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، کوئی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں کے نام آپ نے لکھنے ہیں اس کے نیچے۔ تو اب آپ کیا سوچ رہے ہیں، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے بعد اور یہ سارے پیغمبر آ رہے ہیں، اور دنیا میں اور کوئی پیغمبر نہیں آ رہا سوائے ان کی اولاد میں، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور دنیا میں کوئی اور پیغمبر نہیں آ رہا۔ اس سے آپ کو کیا پتا چلتا، ایک بات کیا پتا چلتی آپ کو، یہ بات پتا چلتی ہے نا کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ واحد قوم تھی دنیا میں، جتنا عرصہ یہ ہزار سال، دو ہزار سال کہتے ہیں گزرے، دو ہزار سال تک انہی کی نسل میں صرف نبوت خاص طور پہ رہی، باقی دنیا میں کوئی ستاروں کو پوج رہا تھا، کوئی درختوں کو، کوئی سانپوں کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، مگر یہ توحید پہ قائم رہے تھے۔ کتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان پہ کہ یہ تھے واحد جو توحید پہ قائم تھے، سمجھے نا۔ تو یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہدایت وہ نعمت ہے، بھلے ان کو اور بہت سی نعمتیں ملی جن کا آگے ذکر بھی آئے گا، من و سلوہ بھی ملا، اور بھی ان کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے، سایہ بھی ملا، چشمے بھی پھوٹے ان کے لیے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کو ملا، نعمتیں ہیں وہ، لیکن کیا کوئی نعمت ہدایت سے بڑی نعمت ہے؟ یہ تو ٹیمپریری نعمتیں ہیں نا، یہ تو دنیا کے تھوڑے دن کی نعمتیں ہیں، اور اصل نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اور لاسٹ ٹائم میں بتا چکی ہوں کہ کیسے کوئی بھی نعمت اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ زحمت بن جاتی ہے، وہ نعمت نہیں رہتی، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہے، چاہے وہ آپ کی صحت ہے، چاہے وہ زندگی ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا ایسی زندگی پہ بھی کہ کاش میری مجھے زندگی ملتی ہی نا، काश मैं मर चुका होता और मेरी मौत ही जो है ना वो मेरा खात्मा होती, मुझे दोबारा जिंदा ना किया जाता, क्योंकि हिदायत नहीं थी ना इस जिंदगी में उसको मिली। तो अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी नेमत तुम्हें दी, तुम्हें और अनअमतु अलैकुम, इसको जरा देखें खास तौर पे, उज़्कुरु नियमती अल्लती अनअमतु, सिर्फ ये भी कहा जा सकता था कि उज़्कुरु नियमती, याद करो मेरी नेमत, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ये क्यों कहा गया, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम की, ये मत सोचो कि ये नेमतें तुम्हारा हक है, क्योंकि वो ये समझने लगे थे हम तो पैगम्बरों की औलाद में से ही है, हमारा तो ये हक है, बस ठीक है हमें ही मिलनी चाहिए। नहीं, अनअमतु मैंने इनाम की, और अल्लाह जिसके ऊपर चाहे इनाम करे, और जो इनाम देने वाला होता है वो जब चाहे इनाम वापस ले ले, ठीक है ना, वो कोई आपका हक नहीं है, वो आप डिजर्व नहीं करते, वो किसी ने आपको दी है, अगर किसी से ली भी आपने कोई चीज है तो बताएं वो जब चाहेगा वापस ले लेगा। कोई भी इस वजह से गुरूर में ना आए कि बस हमें ये मिल गई है तो बस हम ही इसके लायक थे, नहीं, अनअमतु मैंने इनाम की तुम पे, तो ये भी तो कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है, यानी इससे क्या पता चलता है कि तुम फिर अल्लाह का एहसान मानो, इस नेमत को जब सोचते हो कि अल्लाह ने हम पे इनाम की, इससे क्या इंसान के अंदर आएगा, शुक्रगुजारी, ठीक है, शुक्रगुजारी आती है ना, कि जब अल्लाह ताला फरमाए मैंने इनाम की, तुम्हारा राइट नहीं था ये कि ये तुम्हें ही मिलेगी। और देखें ये कुरान पाक में बार बार बनी इसराइल से खिताब आ रहा है, यहूद से खिताब आ रहा है, आज हमने इनको दावत देना बंद कर दिया, क्योंकि हम इतनी नफरतों में जीते हैं ना कि हम सोचते हैं कि बस हमें तो इनसे नफरत, उनसे नफरत, उनसे वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, हम सबसे मजलूम, तो नफरतों के साथ तो जाहिर है दावा नहीं किया जा सकता। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं याद करो मेरी नेमतें ऐ बनी इसराइल, और हम कहते हैं कि हमने तो बनी इसराइल को कुछ बताना ही नहीं है। ये भी तबलीग का हमारे लिए एक मौका है कि हम इन्हीं आयात के जरिए इनको तबलीग करें कि देखो हमारे कुरान में तुम्हारे लिए खिताब किया गया है, तुम्हें पुकारा जा रहा है, वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और देखो मैंने तुमको फजीलत दी तमाम जहान वालों पे, तमाम अकवाम आलम पे तुमको फजीलत दी, किस तरह फजीलत दी अल्लाह ताला ने, हिदायत ही इनके पास थी तो इनको तो प्रेफरेंस मिल गई ना सारे जहान पे, क्योंकि हो सकता है जहान में और किसी के पास माल हो दौलत हो इनसे ज्यादा, पर अल्लाह ताला ने दौलत वाले को नहीं कहा कि मैंने तुझे फजीलत दी सारे जहान, अल्लाह ताला ने हिदायत वाले को कहा है कि मैंने तुझे फजीलत दी, इसका मतलब यही है कि हिदायत सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि इन्हें इनके जमाने के और लोगों पर हमने इल्म में फजीलत दी, इल्म, इल्म की वजह से इनको फजीलत मिली, हिदायत का इल्म था इनके पास, इनके पास वही आती थी, यानी किताबें इनके पास थी सिर्फ, तौरात देखें, जबूर देखें, ये सब इनके पास थी ना, इंजील देखें वो इनके पास थी। और एक और जगह कुरान पाक में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर इनाम की है, तुम में उसने पैगंबर पैदा किए। अब उन्होंने ये नहीं फरमाया कि तुम पर उसने मनोसलवा उतारा, ठीक है वो एक नेमत है, लेकिन वो किस नेमत को गिनवा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं तुम में उसने पैगंबर पैदा किए, तुम्हें बादशाह बनाया और वो दिया जो तमाम जमाने को नहीं दिया, यानी हिदायत दी, तौहीद दे दी, ये वो बड़ी नेमत है। वत्तकू यौमन ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और डरो उस दिन से, बचो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स दूसरे के काम नहीं आएगा कुछ भी। अच्छा इस आयत में आप देखें, इसको पार्ट्स में करें, वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, बचो उस दिन से, क्यों बचे, क्यों, सवाल ये पैदा होता है क्यों, उसके लिए चार बातें बताई गई हैं। नंबर वन यहां पे लिखे ला तजजी, इसके ऊपर नंबर वन लगा दें, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन, ठीक है, आगे नंबर टू लगाएं वला युकबलु मिनहा शफातुन, दो हो गई बातें, आगे नंबर थ्री लिखें वला युखदु मिनहा अदलुन, तीन बातें हो गई, आगे नंबर चार लिखें वला हुम युनसरून। ठीक है, चार बातें हो गई, इसकी वजह से तुम बचो, इन चार बातों की वजह से। देखिए आप समझें इस आयत को, एक तो यहां पे क्यों इस दिन से डराया जा रहा है, क्यों इस दिन से कहा जा रहा है कि उस दिन के आने से डरो बचो, इसलिए कि एक ये अकीदा आखरत का है ना, जब ये खराब हो जाता है तो फिर इंसान का अमल खराब हो जाता है। सबसे बढ़ के ये आखरत का अकीदा इंसान के अमल को सही करने वाला है। अगर आप अपना अमल सही करना चाहते हैं ना, अपना अकीदा आखरत सही कर लें, आपका अमल खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगर इंसान को ये याद रहता है कि अल्लाह के पास जाना है और वो सोचता है वहां पे मुझे कोई छुड़ा लेगा, या वहां पे कोई मेरी मदद कर देगा, या वहां पे जैसे दुनिया में मुजरिम कोई होता है और पकड़ के किसी और को ले जाते हैं, तो मैं ना बच जाऊंगी इसलिए कि किसी और को मेरी जगह पे डाल दिया जाएगा, या फलां हमारे फलाने जानने वाले ना वो बहुत बड़े पीर थे और हमारी अम्मी बड़ी नेक है, और हमारे फलाने के साथ रिश्तेदारी है, वो बड़े नेक बड़े बुजुर्ग हैं और हम फलां की औलाद में से, वो उस दिन हम उनका दामन पकड़ लेंगे, वो हमें गुजरवा देंगे वहां पे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करा देंगे तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम ये सोचें कि हमने तो छूट ही जाना है, बस किसी ना किसी तरह वहां पे कुछ हो ही जाना है, या हम तो बख्शे बख्शाए हैं क्योंकि हम तो खास उम्मती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, चुनी हुई उम्मत में से, हमारा मामला असल में डिफरेंट है ना बाकियों का डिफरेंट है। अगर इस किस्म का हमारा ईमान बिल आखरत है ना, तो ये ईमान बिल आखरत किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। ये समझ लें कि आपने अपने ईमान बिल आखरत को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो नतीजा क्या निकलेगा, जीरो, आपका कोई ईमान बिल आखरत नहीं है। जुबानी कलामी बातें हैं लेकिन इसका असर खत्म हो चुका है, अब इसका असर आपकी जिंदगी पे नहीं होगा। हां, असर कब होगा इस ईमान बिल आखरत का, ये हमारे ईमानियात में से एक जुज्व है ना, एक पार्ट ये भी है ना, हमें जो जिन चीजों पे हमें बिलीव करना है उनमें से एक ये भी है ना ईमान बिल आखरा। जब तक आपका ईमान बिल आखरा ये नहीं है कि मुझे अकेले अपने अल्लाह के सामने खड़े होना और वहां पे कोई नहीं है जो मुझे छुड़ा सकता, कोई नहीं है जो उस वक्त मेरी मदद कर सकेगा, कोई नहीं है जो उस वक्त मेरे काम आ सकेगा, तब तक आपके अमल में फर्क नहीं आ सकता। और इन्हीं चार सूरतों को यहां पे बयान किया गया कि याद रखो, अगर तुम ये सोचते हो ना मेरी जगह किसी और को पकड़ धकड़ करके पकड़ लिया जाएगा, वहां पे तो पता ही नहीं चलना, वहां पे मुजरिम कोई, बाप की जगह, मैंने तो कह देना हमारे तो माँ बाप ने हमें ये सिखाया था, हम क्या करें, हमें तो तरबियत ही ऐसी हुई थी, इन्होंने ही हमें कभी नहीं कहा था मैं ये कह के छूट जाऊंगी, या मुझे तो मेरी फ्रेंड्स ने ये कराया, मेरा माहौल ही ऐसा था। नहीं, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, किसी को किसी के बदले में नहीं पकड़ा जाएगा, किसी को किसी के बदले में नहीं रोका जाएगा, कोई किसी की जगह पे नहीं धर लिया जाएगा, समझे ना। जैसे सूरह मारिज में बड़ी खौफ दिलाने वाली वो आयात है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अदाबी यौम इज़िम बिबनीही व सहिबतिही व अखीही व फसीलतिल्लती तुवीही व मन फिल अर्दि जमीअन थुम्मा युनजीही। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन मुजरिम चाहेगा, आयत नंबर 11 से लेके ये 14 तक है, कि उस दिन मुजरिम चाहेगा कि वो फिदिये में दे दे अजाब से बचने के लिए अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने कुंबे कबीले को, और जो भी जमीन में है सब के सब को, बस सिर्फ वो छूट जाए। इंसान देना चाहेगा, खुद चाहेगा इनको ले लो मेरी जगह, मेरे बेटे को आग में डाल दो, मेरी बीवी को डाल दो, मेरे भाई को डाल दो, फिर पूरे खानदान को डाल दो जो मुझे पनाह दिया करता था। और तो और जितने इंसान जमीन पे है ना सारों को डाल दो, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वला युकबलु मिन्हा शफातुन, और ना ही कबूल की जाएगी कोई शिफात। ये ना समझो कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा होकर सिफारिश करना शुरू हो जाएगा, जी इसको छोड़ दें, ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे फलां है, और मैं तो इतना बड़ा अल्लाह का पहुंचा हुआ कोई बुजुर्ग और कोई वो हूँ और वली हूँ और औलिया अल्लाह में से हूँ और फलां हूँ, और इसलिए इसको छोड़ा जाए। नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। हाँ, आयतल कुर्सी में है कि शिफात की जाएगी, लेकिन जिसको मैं यशफा वो इंदा हो इल्ला भी इज़नी, जो शिफात कौन कर सकेगा, इल्ला भी इज़नी, जिसको इज़न अल्लाह की तरफ से मिलेगा, अल्लाह ताला किसी के दिल में डालेगा, जिसके दिल में डालेगा वो भी अल्लाह की तरफ से ही होगा कि जिसके वो चाहेगा दिल में डालेगा, और जिसके लिए चाहेगा उसके दिल में डालेगा। मसलन है कि किसी के दिल में अगर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डालते हैं, तो अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेंगे उनके दिल में डालेंगे। ये नहीं कि वो खुद से करेंगे, मगर उनको ऑनर देना होगा कि ये देखो मेरे ये प्यारे बंदे हैं, इनको मैं इनकी वजह से इसको माफ़ करता हूँ। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो खुद चाहते हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला है कि मेरे से फलां के लिए सिफारिश करो, क्योंकि अल्लाह ताला ही उस बंदे को बख्शना चाहते हैं। तो फिर मामला क्या हुआ? असल बात तो यही हुई ना कि अल्लाह ने जिसको बख्शना है बस उसको किसी से शिफात दिला के भी बख्श देगा। तो लेकिन किसी के पास, खुद के पास इतनी ताकत नहीं है कि आज आप किसी का दामन पकड़ लें, आज आप कुछ कर लें तो किसी तरह वहां पे जाके खलासी हो जाएगी। नहीं, वला युखदु मिनहा अदलुन, और ना लिया जाएगा कोई बदला कि इंसान कहे हम तो इतने अमीर हैं, हम तो कुछ दे दिला के छूट ही जाएंगे। दुनिया में तो यही सोचते हैं ना, जिन जो अमीर लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, अगर सजा हो भी जाती है तो कोई जुर्माना कोई इस तरह भर के, कोई जमानतें करा के बाहर आ जाते हैं। बड़ी बड़ी जमानतें होती हैं, लाखों की जमानतें होती हैं, लेकिन जमानत करा ली बाहर आ गए, या सजा को कम करा लेते हैं या कुछ पेमेंट कर देते हैं। तो वहां पे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकती कि आप फाइन्स पे करके और खुद छूट जाएं। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी अब्द मनाफ, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ए सफिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ए मेरी बेटी फातिमा, मुझसे जो माल चाहे ले लो, लेकिन मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, अपनी बेटी से, अपने कबीले से, अपनी फूफी से, तो फिर सोचें जरा कि हम किस खुशफहमी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से किसी के भी काम नहीं आ सकते, अल्लाह ताला जिसके लिए इज़्ज़त देगा। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे उन। अब जब इंसान के पास ना रिश्वत दे सकता है कहीं, ना किसी को अपनी जगह पकड़वा सकता है। आज तो ये होता है ना, लोग अपने नौकरों को, उनको पैसे दे दिला के उनकी फैमिलीज को टेक केयर कर लेते हैं और उनको पकड़वा देते हैं कि जाओ तुम हमारी जगह ये कन्फेस कर लो कि मैंने किया ये जुर्म, और खुद आराम से बैठ जाते हैं, जेलों से छूट जाते हैं, घर वालों को कोई दियत वगैरह दे के फिर छूट जाते हैं, कुछ ना कुछ कोई सिलसिले कर ही लेते हैं। लेकिन वहां पे वो मदद नहीं दिए जाएंगे, कुछ भी पुकारेंगे भी मदद के लिए तो कोई मदद करने वाला नहीं होगा। वो मदद किसी ने क्या करनी है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन तो इंसान भाग रहा होगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने बेटे से। लिकुल इमरी मिनहुम यौमादिन शानु युगनी, उस दिन हर एक के पास अपना ही एक ऐसा शुगल होगा, ऐसा काम होगा, किसी को किसी की कहां होश होनी है, क्योंकि मदद किसने करनी है। वो मदद का सोच सकता है कि किसी से मदद के लिए पुकार लूंगा, किसी को बुला लूंगा, किसके पास इतना है कि आज वो किसी के काम आए या किसी की पुकार सुने या किसी पे तरस खाए। तो ये चारों सूरतें, इसके अलावा कोई सूरत है? ये चारों सूरतें ही है ना, अल्लाह ताला ने सबको रूल आउट कर दिया। लो, अब बचने की कोई भी सूरत नहीं है, अनलेस तुम खुद तकवा इख्तियार करो, डरो उस दिन से, अपने लिए खुद इंतजाम करो, अपने इस अकीदे को दुरुस्त करो। और एक बात याद रखें, इंसान इस दुनिया की गहमा गहमी में जितनी देर होता है ना, वो कोई भी नेकी करना या आखरत के लिए अपने लिए कुछ भी जमा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब मिसाल के तौर पे एक सिर्फ एक एग्जांपल से, ये अब गुजरा है मुहर्रम का रोज़ा गुजरा है या जिलहज का रोज़ा गुजरा है, तो अब ये फ़र्ज रोज़े नहीं है, क्या चीज़ इंसान को पुश करती है कि वो ये रोज़ा रख ले या तहज्जुद के लिए उठ जाए या कोई और ऐसा काम है जो मुश्किल है उसके लिए करना वो कर ले, क्या चीज़ आपसे कराएगी? जब तक आप इस दुनिया की अट्रैक्शंस और इसके अंदर खुद को रखते हैं ना, आप कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी रोज़ा रखती तो कौन सा, कोई बात नहीं मैंने रमज़ान के तो रखे ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं फ़र्ज नमाजें तो पढ़ती हूँ ना, भी तहज्जुद के लिए उठी तो क्या हो जाएगा, ऐसा सब थोड़ी उठते हैं। इंसान बहुत सारे अपने आप को एक्सक्यूजेस दे देते हैं और भी कामों में। जब तक आप अपने आप को अल्लाह की अदालत में खड़े ना कर लेना, इमेजिन करें कि मैं वहां पे खड़ी हुई हूं, तब तक आपके लिए सारे काम बहुत मुश्किल होंगे। नफ्स नहीं चाहेगा ये काम करने, बहुत मुश्किल लगेंगे। आसानी पता है कब होती है? जब इंसान ये इमेजिन करता है कि मैं बिल्कुल अकेली अल्लाह के सामने खड़ी हुई हूं और मेरे साथ कोई भी नहीं है और मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है और अल्लाह ताला मेरे से पूछ रहे हैं कि लाओ तुम क्या लेकर आई हो, उस वक्त मैं क्या कहूंगी? अपने आप को यहां से स्विच ऑफ करें और वहां पे ऑन कर दें, तब ये सारे काम आसान हो जाएंगे। और जितनी देर तक आप वहां का स्विच ऑफ रखेंगे ना और यहीं पे ऑन रखेंगे कि यहाँ पे भी हमने जाना है, वहां भी घूमना है, आज ये काम है, आज वो है, क्या करूं, इवन ये कुरान पढ़ना भी, इवन ये सीखना, ये बैठना, ये सबक याद करना, ये सब मुश्किल है, ये सब मुश्किल लगेंगे। फिर क्या हो गया, और भी तो लोग नहीं पढ़ते, वो भी तो चल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ये कौन सा जरूरी है, कितनी सारी बातें आएंगी, बहुत सारी जहन में बातें आएंगी, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आप अपने आप को देंगे। कौन सी चीज़ है जो आपको खड़ा रखती है, जो आपको सोने नहीं देती, या जो आपको मेहनत कराती है, या जो आपको अपने ऊपर जबर करके भी करना पड़े तो आप करते हैं, कौन सी चीज़ कराती है? वो यही ख्याल कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ। जिस दिन आप ये इमेजिन करना सीख गए ना कि आप यहाँ का बटन ऑफ करके और वहाँ का ऑन कर लें, उस दिन बहुत सारे काम आपके सुधर जाएंगे और आसान हो जाएंगे आपके लिए करने। लेकिन जब तक ऐसा नहीं कर पाते, आप यहीं तो ऑन रहते हैं हमेशा, वहां का देखी जाएगी, जब आएगा तो तब की बातें। तब तो यकीन करें कुरान पढ़ना भी मुश्किल, फजर के लिए उठना भी मुश्किल, जो तो छोड़े फजर के लिए उठना भी मुश्किल, तब तो देखें सबक याद करना भी मुश्किल, हाय ये और हाय वो, हर चीज पे हाय हाय निकलेगी। तो इसके लिए अपने शऊर के साथ अपने आप को अल्लाह के सामने खड़ा करें, इमेजिन करें इसको, सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, और फिर सोचें कि मैं उस वक्त अपने पूंजी में से क्या निकाल के दिखाऊंगी, क्या निकाल के दिखाऊंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर सारी देखिएगा आप कितनी आसानियां हो जाएंगी आपके लिए। याद रखें आखरत का अकीदा खराब है ना या कमजोर है तो गुनाह करते हुए फिर इंसान डरता नहीं है, और नेकी करनी बड़ी भारी हो जाती है, बड़ी भारी हो जाती है, एक कदम उठाना भारी होता है, एक आयत याद करनी भी भारी है फिर तो, क्योंकि इंसान को कोई डर नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई गलत भी कर लूंगी तो क्या हो गया, अगर ये नेकी नहीं भी करूंगी छोड़ भी दूंगी इसको तो कौन सा फर्क पड़ गया, कौन सा कोई पूछने वाला है, वहां पे मुझे कोई छुड़ा ही लेगा, वहां पे हम भी कुछ कर ही लेंगे, जहां पे और जा रहे होंगे हम भी चले ही जाएंगे, तो अब फिर क्या परवाह रह गई, फिर ठीक है आराम करो, फिर क्या मेहनत करनी, क्या जरूरत है भाई, दिमाग खर्च होता है इतना, इतना दिमाग थक जाता है। तो ये करके देखिएगा और इस आयत को बार बार पढ़िएगा, अपने लिए पढ़िएगा, अल्लाह ताला ने डराया है बनी इसराइल को ही नहीं डराया, हम सबको डराया, क्या करोगे तुम, तुम्हारे बदले में किसी को भी नहीं और पकड़ा जाएगा, क्या करोगे, तुम्हारे लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा, निगाह दौड़ाओ पूरे हशर के मैदान में, कोई है जो तुम्हारी सिफारिश करे, तुम्हारे पास होगा क्या कि अपने बदले में दे दो? तन के कपड़े तक तो तुम्हारे पास है नहीं उस वक्त, क्या दोगे कि जिसको दे के छूट जाओ तुम? कौन सा बैंक बैलेंस होगा तुम्हारे पास? कौन से सोने चांदी होंगे? अगर होते भी तो ना कबूल किए जाते, लेकिन उस दिन तो है ही नहीं। और मददगार ढूंढो अपने लिए, मददगार कोई मदद करने वाला नहीं होगा। दुनिया में लोग छोड़ जाते हैं, वहां पे आप सोचते हैं कि इतनी अफरा तफरी में कोई चाहेगा कि मुझे आग में डाल दिया जाए इसकी जगह? तो अपना अपना करो, अपना इंतजाम कर लो भाई, इससे पहले कि ये दिन आ जाए। तिलावत चला है यहां तक, फिर आगे चलते हैं।
يا بني إسرائيل قم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون